कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं, हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं,
हम सब आते हैं करने प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करते हुए कुशल पूर्वक हैं। और मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ जो हमेशा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आप तैयार बैठे रहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम की पुस्तक में से पहले राजाओं की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद को जब बतशेबा ने उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया, तब दाऊद ने सुलेमान का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाया और उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वह हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखाए और व्यवस्था का पालन करे तथा उसकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों, चेतावनियों का पालन करता रहे, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उसके परिवार में सिंहासन पर विराजने वाले की घटी न होगी। मेरे मित्रों, इसके बाद उसने सुलेमान को अनेक अन्य निर्देश दिए। तब दाऊद की मृत्यु हो गई और सुलेमान ने अदुनिया को मृत्यु दंड दिया और योआब को भी, क्योंकि वह अदुनिया के साथ था। दाऊद ने तो अपने वचनानुसार शिमी को जीवन दान दिया था, परंतु सुलेमान की आज्ञा ना मानने के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया। सुलेमान ने मिस्र की राजकुमारी से विवाह किया और परिणाम स्वरूप मिस्र का फिरौन तो उसका मित्र हो गया, परंतु उसने ऊंचे स्थानों पर उपासना आरंभ कर दी जो विजातीय विधि थी। मेरे मित्रों, हम आगे भी देखें कि अब सुलेमान एक ऊंचे स्थान गिबोन में बलि चढ़ाने गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ और उसे बुद्धि के साथ धन और महिमा भी अतुल्य प्रदान की। मेरे मित्रों, आज हम उसे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। मित्रों, आइए आप मेरे साथ पहले राजा की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद को निकालिए, जहां पर लिखा हुआ है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है जैसा कि आज वर्तमान है। मेरे मित्रों, सुलेमान समझता था कि वह दाऊद के जूते नहीं पहन रहा था, उसकी राजगद्दी पर बैठा था। उसे यह बोध था, मालूम था, काज संभालने में दक्ष या निपुण नहीं है। आगे वचन में लिखा है, पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। मित्रों, ध्यान दीजिए, वह स्वयं को एक अनुभव से रहित बच्चा मानता था। वह उस विशाल राष्ट्र का प्रशासन संभालने में अपने आप को अयोग्य समझ रहा था। आज अनेक जन परमेश्वर की सेवा में अपनी अक्षमता का बोध नहीं करते हैं। हम सब परमेश्वर की सेवा में परिपूर्ण अक्षम हैं। मित्रों, हमें इस सत्य का बोध हो जाए तो हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मेरे मित्रों, सुलेमान ने भले और बुरे को परखने का विवेक मांगा। मैं इसे समझना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि की याचना की, यह सच है, परंतु उसने कैसी बुद्धि की याचना की? उसने राजनीति की बुद्धि मांगी? वह राजनीतिज्ञ होने की क्षमता मांग रहा था। वह अपनी प्रजा का न्याय और प्रशासन और महान राष्ट्रीय निर्णय लेना चाहता था। मित्रों, उसने आत्मिक विवेक की याचना नहीं की थी, इसे स्पष्ट समझना आवश्यक है। सुलेमान ने नीति वचन और सबोपदेशक लिखे, इन पुस्तकों में हम सांसारिकता बुद्धि देखते हैं। नीति वचन उन युवाओं के लिए एक अद्भुत पुस्तक है जो अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि श्रेष्ठ गीत में वह आत्मिक विवेक का प्रदर्शन करता है, उसकी वृद्धावस्था में उसकी विजातीय पत्नियों ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया था। अतः सुलेमान ने आत्मिक विवेक की अपेक्षा राजनीति में बुद्धि की याचना की थी। परमेश्वर ने उसके संपूर्ण जीवन उसे यह बुद्धि प्रदान की। मेरे मित्रों, हम देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 से 11 पद में। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। मित्रों ध्यान दीजिए, सुलेमान बुद्धिमानी के निर्णय लेना चाहता था। आज कुर्सी का झगड़ा है। आज सब अपनी महानता और योग्यता की डींग मारते हैं। वे समस्याओं के समाधान का विश्वास दिलाते हैं। अब तक तो मेरे मित्रों, हम में से कुछ ने यह निष्कर्ष निकाल ही लिया होगा कि ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। उनके पास ना तो समाधान है और ना ही बुद्धि है। अब यदि कुछ लोग प्रगट में आकर यह कहें, मुझ में बुद्धि नहीं, मुझ में योग्यता नहीं, मैं अपने मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहता हूं, तो यह एक आश्चर्यचकित बात होगी और संसार को आश्चर्यचकित कर देगी। सुलेमान ने यही कहा था और परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की। यह उसका एक अद्भुत कदम था। मेरे मित्रों, हम पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। मित्रों, बुद्धिमान राजा के रूप में सुलेमान का अपनी ही प्रतिष्ठा थी। नीति वचन और सभोपदेशक नामक पुस्तकें पढ़ने पर परिकाष्ठा देखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनके लिखने में परमेश्वर की प्रेरणा नहीं थी। स्पष्ट है कि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान कर रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट करता है कि केवल मानवीय बुद्धि जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मित्रों, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि राजा का आचरण मान दाऊद है। यह आचरण मान अधिक ऊंचा तो नहीं है, परंतु सच तो यह है कि इस मानदंड के उपलब्ध करने में भी बहुत ही कम राजा हुए हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में, तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार की। मेरे मित्रों, होम बलि और मेल बलि यीशु की ओर संकेत करते थे। होम उसके व्यक्तित्व को प्रकट करती है और मेल बलि उस सत्य का प्रकाशन करती है कि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर शांति स्थापित की। यीशु जो है वही एक कारण है कि वह हमें परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाने योग्य है। मित्रों, उसका लहू जो बहाया जाता है हमारे पापों के शोधन अर्थात शुद्ध के लिए है। इस अध्याय के अंत में सुलेमान की बुद्धि का उदाहरण है। वह एक जटिल समस्या का अति चतुर समाधान खोज निकालता है। दो वेश्याएं एक बालक के लिए झगड़ रही थी। दोनों का कहना था कि वह बालक उनका है। वे राजा के पास अपनी समस्या लेकर के आई। राजा इस समस्या का समाधान कैसे करे? उस बच्चे की माँ कौन है? आज तो इसके वैज्ञानिक निदान है, परंतु सुलेमान के युग में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। सुलेमान ने उनसे कहा कि वह बच्चे के 2 बराबर भाग कर देता है और दोनों एक एक भाग लेकर यहाँ से चली जाए। जो उस बच्चे की माँ नहीं थी वह कहने लगी, ठीक है बच्चे के 2 भाग कर दो। परंतु बच्चे की माँ अपनी माँ ने कहा, नहीं बच्चे को मत मारो, बच्चा इस स्त्री को ही दे दो। मेरे महाराज आप इसे दे दें। तब सुलेमान समझ गया कि वह स्त्री जो बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ममता का त्याग कर रही थी, वही उसकी माँ है। मेरे मित्रों, इस प्रकार का न्याय बहुत अद्भुत था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इसराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। मेरे मित्रों, सुलेमान द्वारा अपने न्याय के लिए गए अनेक बुद्धिमानों के निर्णयों में यह एक उदाहरण है। आइए हम अब अगले अध्ययन में आए और देखें कि सुलेमान के 11 हाकिम हैं। मित्रों, अध्याय 4 में सुलेमान का राज्य अपनी चरम सीमा पर है। सुलेमान के राज्य की विशेषता थी कि उसके राज्य में व्याप्त शांति और समृद्धि। शांति ही तो मुख्य बात है जो हमें चाहिए होती है या नहीं? मेरे मित्रों, मेरे विचार में हम सुलेमान को शांति का राजकुमार और दाऊद को युद्धों का पुरुष कह सकते हैं। सच तो यह है कि सुलेमान और उसकी प्रजा जिस शांति का आनंद ले रही थी, वह युद्ध के इस पुरुष दाऊद द्वारा ही स्थापित की गई थी। मेरे मित्रों, इसमें हमारे लिए आत्मिक शिक्षा है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपनी भावनाओं के कारण हमारे पाप क्षमा कर देता है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ऐसे निम्न स्तर पर पाप क्षमा नहीं करता। मेरे प्रियो, यह एक युद्ध था जो जीता गया है। एक बलिदान चढ़ाया गया है, खून बहाया गया है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा लहू को बहा दिया और शांति स्थापित की। केवल उसके लहू के द्वारा ही हम शांति में प्रवेश करते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 6 पद में लिखा हुआ है, राजा सुलेमान तो समस्त इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजरियाह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और एलियाह प्रधान मंत्री थे। अहिलूत का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातर याजक थे। और नातान का पुत्र अजरिया भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। और अहिशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। मेरे मित्रों, इस अध्याय के आरंभिक पदों में सुलेमान के हाकिमों की सूची दी गई है। इनमें से कुछ दाऊद के पोते हैं, अर्थात सुलेमान के भतीजे थे। पद 5 में अजरियाह का उल्लेख है। यह या तो दाऊद के पुत्र नातान या भविष्यद्वक्ता नातान का पुत्र था। आइए आगे देखें सुलेमान के 12 उच्चाधिकारियों के नाम। पहले राजाओं के पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, और सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इसराइलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। मित्रों, सुलेमान के ये 12 अधिकारी थे जो इसराइल के 12 गोत्रों में से चुने हुए लोग थे। वे राजा और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध के उत्तरदायी थे। यह सुलेमान ही की व्यवस्था थी। हम आगे देखते हैं राज्य की महानता। पहले राजाओं के पुस्तक 4 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम पढ़ते हैं, यहूदा और इसराइल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर पलिस्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह महान समृद्धि और शांति का समय था। युद्ध तो अब समाप्त हो गए थे, सबके लिए बहुतायत थी। यह तो उस भावी राज्य की एक झलक मात्र है। सहस्त्र वर्षीय राज्य में और भी शांति होगी। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 25 पद में आगे लिखा है, और दान से बेशरबा तक ये सब यहूदी और इसराइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। मित्रों, हमें यह अनेक बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सुरक्षा और निश्चिंतता का समय था। आज के संसार में ऐसा वातावरण नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को शांति नहीं है परंतु पृथ्वी पर आने वाली है जब शांति का राजकुमार आएगा। सुलेमान के युग में प्रत्येक मनुष्य अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठता था। इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में ऐसा नहीं था कि एक मनुष्य राजसी मकान में रहे और एक झोपड़ी में। हर एक के पास अपनी दाखलता और अपना अंजीर का वृक्ष था, अर्थात सबकी अपनी अपनी संपत्ति या संपदा थी। सबके पास सुख सुविधा थी। दान से बर्शिबा तक, अर्थात उत्तरी सीमा से लेकर के दक्षिणी सीमा तक शांति व्याप्त थी। सुलेमान के युग में सर्वत्र ऐसा ही था। हम आगे देखते हैं, पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है, फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और उसके 12,000 सवार थे। मित्रों, मैं इस पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घोड़ा युद्ध का पशु था। परमेश्वर ने घोड़े बढ़ाने के लिए मना किया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17:16 में परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश है, और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से प्रजा के लोगों को मित्र भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह घोड़े और पत्नियां न बढ़ाएं, परंतु सुलेमान ने घोड़े और पत्नियां दोनों ही बहुत रखे। संपूर्ण देश में उसके घुड़साल थे क्योंकि उसने बहुत सारे घोड़े और सवारों को रख लिया था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 9:25 में, जहां पर इसके बारे में लिखा है कि उसके पास 4,000 अस्तबल थे। सुलेमान ने परमेश्वर की बुद्धि के विपरीत निश्चय ही घोड़े बहुत रखे। हम आगे देखते हैं सुलेमान की महान बुद्धि और ख्याति। अब हमें सुलेमान की बुद्धि का वर्णन सुनाया जा रहा है, जिसे हम पहले राजा के पुस्तक 4:29-30 में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व वही क्षेत्र है जहां से ज्योतिषी आए थे। हम राजाओं की पुस्तक 4:31 में आगे पढ़ते हैं, वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कृति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। इस पद में 4 विशिष्ट बुद्धिमान मनुष्यों का उल्लेख है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 4:32-33 में पढ़ते हैं, उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारियों से लेकर भीत में से उगते हुए जुफा तक के सब जड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। मेरे मित्रों, हमें बताया गया है कि सुलेमान ने 3,000 नीति वचन कहे। बाइबल में तो कुछ का ही उल्लेख है। उसके भजनों की संख्या 1500 है। विश्वास कीजिए, हमारे पास एक गीतकार भी है। हमारे पास तो उसका एक ही गीत श्रेष्ठ गीत है। वह वृक्ष विशेषज्ञ था। उसने लबानोन के देवदार से दीवार के उगने वाले हिसब तक की विषय में चर्चा की है। चट्टानों में उगने वाले पौधे की भी चर्चा की है, अर्थात वह जीव वैज्ञानिक भी था। उसने प्राणियों की चर्चा की है। वह पशु और पक्षियों का विज्ञान और ज्ञाता भी था। वह चिड़ियों के विषय में भी लिखता है। कीट विज्ञान में वह कीड़े मकोड़ों की चर्चा करता है। मत्स्य विज्ञान में उसने मछलियों की चर्चा की है। मेरे मित्रों, वह इन सब क्षेत्रों में ज्ञानवान था। यही विज्ञान का आरंभ है। ये सब क्षेत्र या विषय सुलेमान की रुचि के विषय थे। हम पहले राजाओं की पुस्तक 4:34 में पढ़ते हैं, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कृति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, सुलेमान अपनी बुद्धि के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अनेक परदेशी उसकी बातें सुनने के लिए आते थे। नीति वचन के संग्रह में हमारे पास उसके अनेक नीति वचन हैं। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये नीति वचन जीवन में कदम रखने वाले युवक के लिए अत्यधिक सहायक हैं। कुछ नीति वचन युवकों को जीवन एवं व्यवसाय में सहायक देते हैं। देखिए परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहारिक है। वह छोटी छोटी व्यवहारिक बातें हमें बताता है जो व्यवसाय से संबंधित हैं, सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। नीति वचनों में जीवन के मार्गदर्शक मूल सिद्धांत भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि नीति वचनों का पालन करके एक युवक मसीही विश्वासी हो जाता है, परंतु उसके पास निश्चय ही एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। मेरे बहुत सारे जवान भाई बहन आज अपने मार्गों से भटक रहे हैं। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप नीति वचन की पुस्तक अवश्य पढ़ें और निश्चय जान लें कि जब आप उसका पालन करेंगे तो आप परमेश्वर की निकटता को महसूस करेंगे। मेरे मित्रों, इस जवान व्यक्ति ने उस समय उस बुद्धि को प्राप्त किया जिसे परमेश्वर ने उसे दिया और आज वह विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी ज्ञान को प्राप्त करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो निश्चय जाने कि आपको बुद्धि प्राप्त होगी। क्या आप चाहते हैं कि आप उस प्रकार के वचन को माने, उस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करें? तो आज प्रभु के पास आएं, उससे मांगे और निश्चय जाने कि वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आपने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर सब कुछ देने में सक्षम है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
प्यार तेरा मसीह जिंदा।